प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 14 दिसंबर 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं मोहम्मद अमीनुल्लाह आरा बिहार से, अशोक कुमार हरदोई उत्तर प्रदेश से, नरेश कुमार सिरोही राजस्थान से, जय वर्मा एटा उत्तर प्रदेश से, तेज राज टेलर सुमेरपुर राजस्थान से, रौनक बंधुजी निकोसे काटोल नागपुर से और उत्कर्ष अग्रवाल अलीगढ़ से। तो मोहम्मद अमीनुल्लाह, अशोक, नरेश, जय, तेजराज, रौनक बंधुजी और उत्कर्ष आप सभी 7 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों अब स्वागत के बाद हम आते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पर और इसकी शुरुआत करते हैं एआईआर न्यूज से। मित्रों मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि हालांकि मैं अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर में एआईआर न्यूज की उन बातों की चर्चा करता हूं जो आपके लिए सिविल सर्विस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपको यहीं तक सीमित नहीं रहना है। ये जो एआईआर न्यूज है ये आपको खुद भी सुनना है क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब तक आप उसे करेंगे नहीं तब तक आप मेरे इस न्यूज एनालिसिस को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे और सच पूछे तो आपकी जो तैयारी भी है वो आधी अधूरी ही रहेगी। आप इस भ्रम में कतई न रहें कि मैं चूंकि न्यूज की एनालिसिस करता हूं जिसमें एआईआर न्यूज भी होती है और अखबार की न्यूज भी होती है तो इसी से आपका काम चल जाएगा। मुझे 1-2 मेल से कुछ इस तरह का आभास मिला है कि कुछ को ये गलतफहमी है कुछ स्टूडेंट्स को कि शायद यही अपने आप में सफिशिएंट है। बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है मित्रों, सच पूछिए तो हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर मैं न्यूज और न सुनूं और सारे अखबार न पढ़ूं तो न्यूज एनालिसिस का काम मैं ठीक से नहीं कर सकता। ठीक इसी तरीके से यदि आप न्यूज नहीं सुनेंगे और न्यूज पेपर्स नहीं पढ़ेंगे तो आप भी मेरे इस डेली ऑडियो लेक्चर के सुनने का काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज नोट इट डाउन कि आपको न्यूज भी सुनने हैं और अखबार भी अपना एक पढ़ना ही है। 2 अखबार में जनरली सजेस्ट करता हूं दोस्तों, एक नेशनल न्यूज़पेपर और दूसरा अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पर आधारित कोई भी एक न्यूज़पेपर। तो इससे आप अपने को मुक्त करने के बारे में सपने में भी न सोचें। तो मित्रों मुझे यकीन है कि आप लोग न्यूज सुन रहे होंगे और यदि आपने कल एआईआर की न्यूज सुनी होगी तो उसमें 2 महत्वपूर्ण खबरें आपको सिविल सर्विस की दृष्टि से मिली होंगी। पहला है वही चेन्नई में जो तूफान वर्दा तूफान आया है उसको लेकर के कुछ खबरें थी और इसके बाद दूसरा खुदरा मूल्य सूचकांक में जो कमी आई है। इन दोनों बातों को आज हम डिस्कस करेंगे मित्रों। दोस्तों जहां तक चेन्नई में तूफान की बात है उसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत मैं नहीं समझता। मैंने कल आप लोगों से साइक्लोन के बारे में कुछ बातें की थी। कल मैंने बहुत अच्छी बात आप लोगों से शेयर की थी कि किस तरीके से एक जो घटना होती है उस घटना को आधार बनाकर आप मल्टी फैसेट तरीके से बहुआयामी तरीके से अपनी सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक दृष्टि उससे डेफिनेटली मिली होगी कि सिविल सर्विस की तैयारी कैसे की जाती है। दोस्तों उसी बात के दौरान मैंने एक बात आपसे कही थी कि अभी कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कभी कभी, जैसे अभी 2016 के ही एक प्रश्न में उत्तराखंड में बादल फटने के बारे में पूछा गया था कि क्या कदम उठाए गए। मित्र हो सकता है कि वो हम मिस कर जाते हैं लेकिन जो उत्तराखंड के स्टूडेंट होंगे क्योंकि वो कदम उठाए जा रहे हैं वहां के अखबार के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वहां के अखबारों में तो वो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंटली आ सकती है लेकिन साउथ के अखबारों में शायद वो खबर उतने महत्वपूर्ण तरीके से ना आए तो साउथ के स्टूडेंट फिर क्या करें। दिल्ली के स्टूडेंट हैं उनको ये खबर मिल जाएगी क्योंकि उत्तराखंड दिल्ली के करीब है लेकिन साउथ और नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के लिए तो वो खबर उन्हें वह खबर उस रूप में नहीं मिलेगी। तो मित्रों, ऐसे समय पर हमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है और कॉमन सेंस सिविल सर्विस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेपर सेटर भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर नहीं है जिसको आप बहुत कंटेंट पर बेस्ड चीजें लिख सकें, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि यदि आपने थोड़ा सा भी कॉमन सेंस इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली आप इसका उत्तर इस तरीके से तो दे ही देंगे कि आपको 12.5 नंबर में एटलीस्ट 5 नंबर तो मिल ही जाए। और 12.5 में अगर आपको 5 नंबर मिल गए, मतलब 40% मिल गए, 40% नंबर जनरल स्टडीज में स्कोर करना बहुत बड़ी बात है, आसान तो नहीं है, या कह लीजिए कि छोटी बात तो नहीं है। चलिए बहुत बड़ी बात तो नहीं कहे, लेकिन कम से कम छोटी बात तो नहीं है। तो मित्र, कॉमन सेंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मित्रों, आज मैं उस कॉमन सेंस के डेवलपमेंट के लिए, आपके उस कॉमन सेंस की एक दृष्टि विकसित करने के लिहाज से मैं कुछ वो बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो मुझे मिली हैं कि अभी जो चेन्नई में जो वर्दा जो तूफान आया, उसके आने से पहले वहां किस तरह की व्यवस्था की गई थी। देखिए, काफी तेज तूफान था और आप न्यूज में सुन रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि इससे उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना कि हो सकता था। मित्रों, आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, 1999 में उड़ीसा में एक भयानक तूफान आया था जिसका नाम था पारदीप तूफान आया था और उससे लगभग 17 लाख लोग बेघर हो गए थे, 17 लाख पीपल बेघर हो गए थे। यह बात अलग है कि वो उसकी स्पीड वो वर्दा से काफी खतरनाक तूफान था। जैसे वर्दा की जो स्पीड है समझ लीजिए कि 150 किलोमीटर पर आवर की है, जबकि पारदीप की तो 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, और जितनी ज्यादा गति होगी उतना खतरनाक वो तूफान होगा। ये 1999 की बात है, 17 लाख लोग बेघर हुए थे। लेकिन अभी आप सुन रहे हैं, अखबारों में पढ़ भी रहे होंगे कि दुर्घटनाएं घटी हैं, लोगों की मृत्यु भी हुई है, लेकिन उतनी नहीं, दहाई की संख्या में है, बहुत कम। अब देखिए, इतनी बड़ी कैलेमिटी होती है तो कुछ मृत्यु हो जाती है, बहुत बेहतर हो कि हम इन्हें भी बचा सकें, लेकिन कम से कम अगर बहुत बड़ी संख्या से हम बहुत थोड़ी संख्या पर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक संतोष का भाव रहता है और हो सकता है कि आगे चलकर हम एकदम शून्य पर पहुंच जाएं। जान माल की भी हानि आपको उतनी ज्यादा दिखाई नहीं देगी, इस बार इस पर ध्यान दीजिए। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ? तो मित्रों, इसको लेकर के मैं कुछ पॉइंट्स आज आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं जो कि व्यवस्था कर ली गई थी। इसकी जो सबसे पहले जो शुरुआत हुई मित्रों, वह है पूर्वानुमान लगाना, मतलब पहले से यह पता लग जाना कि ऐसा कुछ होने वाला है, पूर्वानुमान। प्राकृतिक आपदा के लिए यह सबसे बड़ी शक्ति है, आपदा प्रबंधन का बिल्कुल आप कह लीजिए कि गेटवे है। अगर पूर्वानुमान आपने लगा लिया तभी आप इसे कम कर सकते हैं, मतलब जीरो तक पहुंचा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2013 के थर्ड पेपर में जनरल स्टडीज के पूर्वानुमान पर, आपदा प्रबंधन को लेकर के पूर्वानुमान पर एक प्रश्न पूछा भी गया था। और अच्छी बात यह थी कि वर्धा में वो पूर्वानुमान लगा लिया गया था, ये चेतावनी दे दी गई थी कि ऐसा हो सकता है। देखिए, जब ऐसा हो सकता है तो फिर आप स्टेप्स ले सकते हैं कि अगर ये हो ही गया तो जान माल की हानि कम से कम हो। तो मित्रों, मैं आपको वो स्टेप्स बता रहा हूं कि जो तमिलनाडु की सरकार ने उठाए, और ये ऐसे स्टेप्स हैं जो इस तरह के तूफान या इस तरह की जो आपदा संकट आते हैं तो उसके लिए लगभग समान रूप से होते हैं, क्योंकि आपको यही करना पड़ेगा। चाहे कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, चलिए वो तो आपदा प्रबंधन नहीं है, चाहे कहीं भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, हम किस्मत वाले हैं कि हमारे यहां ज्वालामुखी का संकट नहीं होता है, कहीं बाढ़ आ जाए, तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो सबके लिए समान रूप से होती हैं। तो मैं आपको वो स्टेप्स बता रहा हूं, एक तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट की दृष्टि से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसको तैयार करने की दृष्टि से। इसको ध्यान से सुनिएगा और समझने की भी कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि अनुमान लगा लिया गया, और अनुमान जैसे लगाया गया तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई कि मछुआरे जो है ना समुद्र में न जाएं, जो तटवर्ती क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं वो किनारे चले जाएं, वहां से हट जाएं, या उनको बता दिया गया कि इस तरीके की आप जो एहतियात है वो बरतिए। इसके बाद दोस्तों अब आप प्रशासन को सतर्क करेंगे, लोगों को अलर्ट कर दिया आपने, अब आप प्रशासन को सतर्क करेंगे। तटवर्ती इलाके के लोग को आपने अगर कहा कि आप चले जाइए तो कहां जाएंगे वो? तो तमिलनाडु सरकार ने तुरंत ये किया कि राहत शिविर लगाए, लगभग 300 राहत शिविर लगाए गए, ऐसे स्थानों पर लगाए गए जहां तूफान का असर नहीं हो, राहत शिविर लगाए गए और वहां लगभग 18,000 लोगों को पहुंचा दिया गया। देखिए ये भी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, वो अपना घर छोड़ के बेचारे गरीब लोग कहां जाएंगे, तो राहत शिविर और प्रशासन ने उनको वहां पहुंचाया। और इसके बाद दोस्तों जो तटवर्ती जो क्षेत्र थे जहां भी तूफान का प्रभाव होना था वहां बिजली काट दी गई, क्योंकि अगर वहां बिजली चल जादू रही तो करंट से कुछ भी नुकसान हो सकता है। वहां की बिजली काट दी गई, उस एरिया के ट्रैफिक को बिल्कुल जाम कर दिया गया कि यहां आवागमन बिल्कुल बंद, क्योंकि तूफान तो किसी भी समय अचानक पहुंच जाएगा, फिर आप उनका क्या करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए पुलिस होती है, पुलिस प्रशासन, शहर के लिए नगर निगम, कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड, डॉक्टर्स, ये जो एजेंसीज होती हैं इन सबको सतर्क कर दिए गए, हॉस्पिटल्स वगैरह को सतर्क कर दिए गए कि जरूरत पड़ने पर आपको तुरंत वहां पहुंचना है, आप तैयार हो जाइए। मित्रों इनको सतर्क कर दिया गया, और केवल यही नहीं, केवल इनको ही सतर्क नहीं किया गया बल्कि जगह जगह पर जो NDRF जो आप सुनते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो टीम है, जगह जगह पर आपने तैनात कर दी, जहां जहां भी आपको लग रहा था कि यहां तूफान से ज्यादा नुकसान हो सकता है, या डिस्टेंस देख लिया कि यहां से ये कवर कर लेगा, यहां से ये कवर कर लेगा, यानी कि जरूरत पड़ने पर तुरंत वहां पहुंचा जा सके, तो NDRF की 19 टीमें तैयार कर दी गई और हर टीम में 39 जवान थे, लोग तैनात थे। इस तरह से टीमें जगह 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 पर भेज दी गई। दोस्तों लगातार टीवी और रेडियो पर तूफान की सूचना जारी की जाने लगी कि अब क्या स्थिति है, घरों में जो जरूरी सामान हो सकता है लोगों के पहुंचा दिया गया, लोगों को कह दिया गया कि हो सकता है कि 2-4 दिन आपको दिक्कतें हो तो जो जरूरी सामान है वो रख लीजिए, और सबको ये भी सूचित कर दिया गया कि आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज कर लीजिए, क्योंकि बिजली काट दी जाएगी फिर आपका मोबाइल फोन चार्ज नहीं हो पाएगा, ताकि अगर कहीं आप संकट में फंसे हैं तो अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आप सूचित कर सकेंगे और लोग आपके सहायता के लिए पहुंच सकेंगे। और प्लीज अब मोबाइल का बहुत ज्यादा वैसा उपयोग न करें, केवल इमरजेंसी उपयोग करें। इसके बाद मित्रों पूरे आर्मी को अलर्ट कर दिया गया, उसमें आर्मी के तीनों विंग के जवान हैं, उसमें थल सेना भी है, उसमें जल सेना भी है, युद्धपोत भी हैं, कोस्ट गार्ड भी हैं, पेट्रोलियम जहाज भी हैं, एयरक्राफ्ट भी हैं। जरूरत को समझते हुए सबको अलर्ट कर दिया गया कि आपको यहां यहां रहना है, और जिस तरह से तूफान आने की जितनी डेंसिटी के साथ उसके आने की आशंका है उसी हिसाब से संख्या निर्धारित कर दी गई। इसके बाद मित्रों गोताखोरों को तैनात कर दिया, 100 से ज्यादा गोताखोर तैयार कर दिए गए, डॉक्टरों की टीम तैयार कर दी गई, और खाना, टेंट, कपड़े, कंबल और दवाइयां तैयार रखी गई और जगह जगह पर वो पहुंचा भी दी गई, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत बिना किसी देरी के वो अपने समय पर पहुंच सके। मित्रों ये तो प्रशासन ने किया, लेकिन लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया था, तो लोग भी अपनी तरफ से तैयार थे। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही तूफान आया तो व्हाट्सएप पर वो बताने लगे कि ये जगह सुरक्षित है, इधर से आ जाओ, इधर से चले जाओ। ये देखिए सोशल मीडिया ने कैसे काम किया, यानी छोटा सा रोल सोशल मीडिया का। उन्होंने व्हाट्सएप और फेसबुक पर फटाफट बताना शुरू किया कि आप कहां चले जाएं और कहां बिल्कुल मत जाइए, अपने लोगों को सूचित करने लगे। इसके बाद जो वॉलेंटियर्स थे उन्होंने अपनी हेल्पलाइन बनाई, और हेल्पलाइन बनाने के बाद उन्होंने कहा कि यदि कोई कहीं फंस गया है तो वह इस नंबर पर संपर्क करे और इसकी जानकारी दे। यानी कि एक तरफ प्रशासन काम कर रहा है और दूसरी तरफ वॉलेंटियर्स काम कर रहे हैं, मतलब पब्लिक काम कर रही है। और मित्रों रजनीकांत जानते हैं आप, तमिलनाडु के सुपरस्टार हैं, उन जैसे ने भी ट्वीट करके लोगों को सचेत किया, क्योंकि अगर रजनीकांत ट्वीट करते हैं तो उनके फॉलोअर्स की संख्या इतनी बड़ी है कि ये सूचना के तुरंत पहुंच जाने की में कहीं कोई आशंका नहीं रह जाती है। तो मित्रों ये मैंने कुछ स्टेप्स आपको बताए जो तमिलनाडु सरकार ने लिए और जिसकी वजह से कैलेमिटी में जो इस आपदा प्रबंधन में जो कैलेमिटी होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं हुई, थैंक्स गॉड। तो दोस्तों इससे आपको एक थोड़ा सा दृश्य मिल गया होगा कि किस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाता है। दोस्तों जो दूसरी खबर है वो खुदरा मूल्य सूचकांक की, आपने देखा कि दो साल में सबसे कम खुदरा मूल्य सूचकांक रहा है, ये एक बहुत अच्छी खबर है, एक बहुत अच्छी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी आप कह लीजिए। देखिए खुदरा मूल्य सूचकांक का कम होना ही सच पूछे तो वास्तव में महंगाई का कम होना है, क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक अगर कम भी हो जाता है तो उसका बहुत ज्यादा फर्क लोगों की जिंदगी पर नहीं पड़ता। इसको आप यूं समझ लीजिए कि थोक का मतलब है कि व्यापारी थोक भाव में जब चीजें खरीदते हैं, मान लीजिए कि चीनी है, ठीक है, चीनी 30 रुपए किलो है, मान लीजिए थोक में चीनी 30 रुपए किलो बिक रही है, उसमें थोड़ा सा उसके रेट में कमी हो गई, वो 29.5 रुपए किलो हो गई, मान लीजिए जब 30 रुपए चीनी बिक रही थी तो जो दुकानदार है वो ग्राहकों को 35 रुपए किलो बेच रहा था, अब जब 29.5 रुपए हो गई है तो आधा आठ आने नहीं घटाएगा 34.5, वो 35 ही बेचता रहेगा। इसीलिए जब थोक मूल्य कम होते हैं तो जरूरी नहीं कि खुदरा मूल्य भी कम हो जाए, हाँ जब खुदरा मूल्य कम हो रहा है इसका मतलब है कि थोक मूल्य सूचकांक में काफी कमी आई होगी। तो रियल जो मूल्य सूचकांक होता है दोस्तों वो खुदरा मूल्य सूचकांक होता है, इस पर थोड़ी सी बात बस मैंने की है। और स्वाभाविक है कि जब खुदरा मूल्य सूचकांक कम होगा इसका मतलब है कि थोक मूल्य सूचकांक तो कम हुआ ही होगा, तो इसका असर ब्याज दर पर भी पड़ेगा और हो सकता है आगे चल करके ब्याज दर कम हो, और अगर ब्याज दर कम होता है तो पूरी की पूरा हमारा जो इकोनॉमी का साइकिल है वो एनर्जाइज हो जाता है, बहुत तेजी से घूमने लगता है। इस पर हम लोग कभी फिर बातें करेंगे। मित्रों न्यूज और न्यूज़पेपर्स से इतना ही, न्यूज़पेपर्स से मैं क्लिपिंग्स आज नहीं ले रहा हूं, कुछ क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। मैं दो और थोड़ी सी घटनाओं की आपको केवल सूचना दे रहा हूं। पहला तो यह है दोस्तों कि कल टीवी न्यूज में, डीडी न्यूज में आपने देखा होगा कि गेहूं पर आयात शुल्क 10% कम किया गया है, आयात शुल्क गेहूं पर आयात शुल्क 10% कम। इसकी व्याख्या करने का मेरे पास वक्त नहीं है, बस इतना बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर गेहूं पर आप आयात शुल्क कम कर देते हैं तो विदेश से आने वाला जो गेहूं है हमारे बाजार में सस्ता हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि विदेश से एक गेहूं 1,000 रुपए क्विंटल आ रहा था, उस पर 10% आयात शुल्क लगता था, तो 1,000 रुपए पर 10% आयात शुल्क लगने का मतलब है 100 रुपए टैक्स लग गया, ठीक है, तो 100 रुपए टैक्स लग गया, इसका अर्थ हो गया कि वो 1,100 रुपए क्विंटल भारत बाजार में आकर के बिका भारत के बाजार में। अब भारत का भी अपना गेहूं है तो सीधी सी बात है कि हमारे किसान जो गेहूं पैदा कर रहे हैं अब उन्हें किसी भी हालत में अपने गेहूं की कीमत 1,100 रुपए से कम ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि 1,100 रुपए में बाहर से आ रहा है। तो आयात शुल्क कम करने का नतीजा ये होता है कि हमारे अपने देश की चीजें भी लोग जो पैदा कर रहे हैं सस्ते करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो अगर हमारा किसान मान लीजिए कि उसकी गेहूं की लागत ही 1,200 रुपए क्विंटल आ रही है, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफी कम है, तो ऐसे में किसानों को नुकसान होगा, पहली बात। दूसरी बात यह भी हो सकता है कि किसान गेहूं खरीदना बंद कर दें। तो मैं ये आपको केवल बेसिक जानकारी दे रहा हूं, इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा आर्टिकल दैनिक भास्कर में देवेंद्र शर्मा जी जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनका छपा है, और केवल इस बात के आधार पर मुझे लगता है कि उनका लिखा हुआ आर्टिकल समझने में आपको आसानी हो जाएगी। उसे आप लोग जरूर पढ़िएगा क्योंकि वो अर्थशास्त्र से भी संबंधित है, भारतीय कृषि और किसान से तो संबंधित है ही। मित्रों मैं एक बहुत मजेदार आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, एक अखबार में मुझे जो जानकारी मिली कि जो स्विट्जरलैंड जो देश है वो कचरे का आयात करता है, यूरोपीय देशों से कचरा आयात करता है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि स्विट्जरलैंड में जितना भी कचरा होता है उससे वो बिजली पैदा कर लेते हैं, कचरे के प्रति वो देश बहुत सेंसिटिव है, तो बिजली पैदा करने के लिए दूसरे देशों से वो कचरा मंगाते हैं। और यूरोप का ये नियम है यूरोपीय देशों का कि आप कचरा किसी स्थान पर जला नहीं सकते, आपको कचरे को रिसाइकल ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो स्विट्जरलैंड को कचरा भेज दे। तो एक जानकारी, क्योंकि स्वच्छता और एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन में ये कंटेंट काम आ सकता है। तो मित्रों, अब न्यूज़पेपर्स से भी इतना ही। अब मैं अंतिम चरण पर आता हूं, जो ईमेल का चरण है, और सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, शिपला पुरी जो मोहाली पंजाब से हैं, प्रांजल कुमार पाठक वाराणसी से, दर्शना सोनी, राहुल उपाध्याय न्यू दिल्ली से, सुषमा कोथे और स्वाति, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।